खजलो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला को समारा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समारा, स्नेह में सबको समारा। आओ प्रभु शरण आओ, अनुभव प्रभु प्यार का।
ओम शांति, ओम शांति। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम खुशहाल महिला खुशहाल परिवार टॉपिक पर आधारित यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ऐसी हस्ती आप पहले भी मिल चुके हैं, हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी, जो कि 1962 से आप इस ईश्वरीय ज्ञान में है, अनेक विदेशों में सेवाएं की हैं आपने और वहां का पूरा संभालते हैं आदरणीय दीदी जी, और इस समय ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर हैं आदरणीय दीदी जी, उनका हम करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन करते हैं। और मैं बहनों से अनुरोध करती हूं कि आदरणीय दीदी का बैज लगाकर और पुष्प दे करके स्वागत करें बहने। आदरणीय दीदी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी, जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया खुदा ने, जिन्हें ऐसा बनाया खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। तो आदरणीय दीदी जी का स्वागत हुआ और अभी आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर पारिवारिक आपके जीवन में दिव्यता पवित्रता शालीनता मधुरता किस प्रकार आए वो आदरणीय दीदी से आप सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज हम कलयुग में हैं और सतयुग से महिलाएं समाज में परिवार में बहुत ही महत्व का पाठ बजा रही है। सतयुग में श्री लक्ष्मी, उनका राज्य था। त्रेता में श्री सीता, उनका राज्य था। तो सतयुग त्रेता में जो नारी थी, आदर्श नारी और आदर्श परिवार, कि सब एक दूसरे मिलजुल कर प्रेम प्यार से रहते थे। द्वापर से हमारे पास हिस्ट्री है, द्वापर से नारियों का पाठ थोड़ा नीचे रहा। सतयुग में जितना लक्ष्मी को, नारायण को समान सम्मान मिलता था, द्वापर से जरा नारियों को, चाहे नारी नरक का द्वार है, नारी का काम है सिर्फ चार दीवार के अंदर रहकर घर संभालना है, बाल बच्चे संभालना है, तो न माताओं को पढ़ाते थे, न कोई स्वतंत्रता थी। परंतु कलयुग में अभी जो मॉडर्न नारी है, वो पढ़ लिख कर नौकरी भी करती है, परंतु जैसे कल भी आपने सुना कि चाहे कितना भी नौकरी करे, फिर भी खाना पकाने का काम माताओं का, कपड़े धुलाई माता करे, हो सकता है तो प्रेस भी माताओं को करना है, कपड़े धुलाई करके सब कुछ माताओं को करना है, नौकरी भी करो घर भी संभालो, डबल काम हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि कई बार टेंशन हो जाता है, और कई बार विदेश में तो भाई लोग मददगार बन जाते हैं, क्योंकि विदेश में क्या करते हैं, माताएं खाना पकाती है, फिर पुरुष है बर्तन साफ करते हैं, बच्चे हैं बर्तन को पोंछते हैं, तो काम डिवाइड हो जाता है। परंतु एशिया में, भारत में तो क्या है, कई भाइयों को चाय बनाने भी नहीं आती है, खाना पकाने की बात ही छोड़ो, चाय भी नहीं बना सकते अपने, वो टोटली माताओं के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए जितनी हमारे में आध्यात्मिकता आती जाएंगी, तो क्या है कि बैलेंस रह सकता है। तो जितना जीवन में हम बैलेंस रखेंगे, तो क्या होगा, आनंद होगा और हरेक की दुआएं मिलती रहेंगी। हम कहते हैं बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है और जीवन ब्लिसफुल बनता है, आनंदमय बनता है। तो तो इसलिए रूहानियत हमें बैलेंस सिखाती है कि परिवार में तो रहना ही है, जिम्मेवारी निभानी है, परंतु उसमें रूहानियत हो, और जहां रूहानियत होंगी वहां रूहानी स्नेह होगा। स्नेह होगा, मोह नहीं होगा। ये स्मृति रहेगी, हम परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे हमारा पति है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे माँ बाप है, मित्र संबंधी है, सब परमात्मा के बच्चे। उसका मतलब भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएंगे। और रूहानी स्नेह मेरा नहीं, सब कुछ ईश्वर का। भक्ति में भी कहते थे, हे प्रभु सब कुछ तेरा, मेरा कुछ लागे नहीं, सब कुछ तेरा। तो इसी रीत से जब ये बुद्धि में आ गया, सब कुछ ईश्वर का है, तो मैं जिम्मेवार भी रहेंगी तो ट्रस्टी भी रहेंगी। नहीं तो क्या हो जाता है, हम गृहस्थी बन जाते हैं। गृहस्थी बनने से क्या होता है, फिर मेरापन आ जाता है, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा पति, मेरे माँ बाप आदि आदि। तो मेरे में मोह होता है तो क्या होता है, दुख होता है ना। यदि मेरा बीमार होता है तो उसको, बीमार को जितना दुख नहीं होता होगा इतना मुझे दुख होगा। कई बार बच्चा बेहोश होगा, उनको मालूम भी नहीं है मुझे क्या हो रहा है, और माँ बाप इतने दौड़ भाग करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्या करें, किस डॉक्टर के पास जाए, किस हॉस्पिटल में ले जाए आदि आदि, क्यों मेरापन है। पड़ोसी का बच्चा होगा तो क्या करेंगे, जाकर पूछ के आएंगे, क्या है, कैसे हैं, किसकी दवाई करते हैं आदि आदि, कुछ राय सलाह दे के फिर अपने घर के काम में, खाने पीने सोने में बिजी हो जाएंगे। पर अपने को बीमारी आ गई, न नींद आएंगी न अच्छा लगेगा, क्यों मेरापन है, मोह है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं स्नेह सबके साथ हो, समान हो। हमारे ब्रह्मा बाबा थे, उसके साथ 300-400 भाई बहने 14 साल रहे, अपना परिवार भी था, उनकी युगल, दो लड़के दो लड़की, बहू, सब साथ में थे। परंतु ऐसे कभी नहीं देखा कि वो अपनी पत्नी या अपने बच्चों को विशेष कुछ खातरी करते थे या सेवा देते थे, सबको समान दृष्टि से देखते थे। इसी रीत से हमारा प्यार हरेक के साथ होना चाहिए, कोई हमारा दुश्मन नहीं, सब हमारे भाई बहन। तो ये दृष्टि अभी हमको अपने परिवार के साथ भी अलौकिक दृष्टि वृत्ति रखनी है, ताकि हम उनके साथ मिलजुल कर रहे, प्रेम प्यार से रहे, परंतु मेरा पन्ना। तो प्यार के साथ साथ क्या होगा, सहयोग, एक दो को सहयोग देंगे। जो काम पुरुष कर सकते हैं, पति कर सकता है, वो पति करेगा, जो काम पत्नी कर सकती है पत्नी करेंगी, जो काम बच्चे कर सकते हैं बच्चे करेंगे, तो किसी के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं होगा, सभी मिलजुल कर काम करेंगे। तो क्या होगा, मिलजुल कर प्रेम प्यार से काम करेंगे तो थकावट नहीं लगेंगे, टेंशन नहीं होगा। और फिर बैलेंस रखना है, लव भी हो तो लॉ भी हो, क्योंकि क्या होता है बच्चों के साथ यदि हम थोड़े डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो बच्चे उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं। आजकल बच्चे हैं उल्टे संग में आ जाते हैं और खराब संग के कारण फिर बचपन से ही सिगरेट शराब जुआ आदि खेलने लगते हैं। तो इसलिए माँ बाप को ये भी देखना है कि बच्चे टाइम पर खाते हैं पीते हैं स्टडी करते हैं, नहीं तो बच्चे खेलते रहेंगे टेलीविजन देखते रहेंगे और कभी खराब संग में आकर खराब आदतें भी आ जाएंगी। तो इसलिए बच्चों के साथ लॉ भी रखना है। ऑस्ट्रेलिया में एक माता थी, उसकी 6 साल की बच्ची थी, तो क्या करती थी माता, यदि बच्ची कुछ गलत काम करती थी तो मारपीट नहीं करना, क्योंकि ईश्वरीय विद्या सिखाती है कि किसी को गुस्सा करना मारना पीटना ये भी पाप कर्म है, चाहे हमारे बच्चे भी है, परंतु उसको ये करने से उनको भी दुख होता है हमारा भी पाप कर्म होता है। तो इसलिए यदि बच्ची कुछ गलत काम करती थी तो बच्ची को बाथरूम में बंद कर देती थी कि 10 मिनट अभी तुमको बाहर नहीं आना, फिर कितना भी चिल्लाए दरवाजा ठोके 10 मिनट सजा बाथरूम में, या कहेंगे कि आज तुमको जो तुम्हारी पसंद का है ड्रेस नहीं मिलेगा या पसंद का खाना नहीं मिलेगा, तो ऐसी सजा करती थी। तो इसलिए सजा भी करनी पड़ती है। हमारे पास एक फिलीपींस में माता थी, बच्चे छोटे थे तब तक तो माँ बाप के साथ रोज क्लास में आते थे, परंतु बच्चा जब 13-14 साल का हुआ तो बुरे संग में आ गया, तो सवेरे स्कूल के टाइम जाएगा, स्कूल छूटने के टाइम वापस आएगा, पर स्कूल में एक भी क्लास अटेंड नहीं करता था, खराब संग में आ गया। उस समय जुआ खेलता था ये करता था, और माँ से सोने की चेन ले गया, कंप्यूटर ले गया, बेच दिया। जब माँ को पता लगा कि ये तो स्कूल में जाता नहीं है खराब संग में आ गया, तो माँ ने कह दिया यदि ठीक पढ़ेगा नहीं हम घर में नहीं रखेंगे, स्ट्रिक्ट हो गई, तो बच्चा सुधर गया। तो इसलिए कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। तो बैलेंस रखना पड़ता है, स्वीट भी बनना है, मधुर वाणी भी बोलनी है, मधुरता से काम लेना है, परंतु कभी कभी स्ट्रिक्ट भी बनना है कि ये करेगा, भले घूमने जाओ बाहर जाओ इतना टाइम, टेलीविजन देखो एक घंटा दो घंटा ज्यादा नहीं दिन में, स्टडी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो माँ बाप को भी बच्चों की देखभाल करनी है, क्या करते हैं, किसके संग में जाते हैं आदि आदि। तो दूसरा है कि परिवार में रहते हुए अपनी आत्म उन्नति भी करनी है, शरीर को भी देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई समझते हैं मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर है, शरीर बीमार है कोई बात नहीं मैं तो आत्मा हूँ, नहीं, शरीर को भी देखना है, शरीर की भी संभाल रखनी है, शरीर को भी हमको दिन में दो तीन बारी खाना देना है, कम से कम एक बारी तो बैलेंस डाइट होना चाहिए, क्योंकि यदि सिर्फ दाल चावल खाते हैं तो भी नहीं चलेगा, उसके साथ सब्जी भी चाहिए और सलाद भी चाहिए और फ्रूट भी चाहिए। तो बैलेंस खाना होने से क्या होगा, तंदुरुस्ती ठीक रहेगी। भारत में तो कम से कम माताओं को टाइम रहता है, खुद नहीं पकाते हैं, नौकर रखते हैं, या देवरानी जेठानी सासू आदि घर में कोई होते हैं, नौकरी करते हैं तो वो भी मदद करते हैं। विदेश में तो क्या होता है, अकेले रहते हैं, या पति पत्नी दो बच्चे हैं, अभी दोनों नौकरी करते हैं, खाना पकाने का भी टाइम नहीं है, तो क्या करते हैं, तीन फूड खा ले लेते हैं या बाजार से तैयार रेडीमेड फूड खा ले लेते हैं, फास्ट फूड मैकडोनाल्ड कैंटकी का जाके खा लेते हैं, तो क्या होता है, बैलेंस नहीं रहता है। इसलिए हाँ, जितना परमात्मा की याद में पकाएंगे खाएंगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि खाना तो वही होगा। देखो आज मंदिरों में आप जाएंगे, प्रसाद में हलवा देंगे, वही हलवा यदि घर में बना और वही हलवा होटल में खाओ, फर्क पड़ेगा या नहीं? जो भगवान के निमित्त बनाया हुआ प्रसाद है ना, इतना भी मिलेगा ना, हम सबको घर में बांटेंगे, थोड़ा थोड़ा भी बांटेंगे कि ये शुद्ध भोजन है, मन शुद्ध होगा। घर में खिचड़ी चावल बनाया, खिचड़ी कढ़ी बनाई तो बहुत अच्छी लगेंगे, क्यों, प्यार से बनाया हुआ है। और होटल में पानी पूरी भी खाओ, भेलपुरी भी खाओ, परंतु जो घर में खाते हैं उसमें जो मजा है वो मजा नहीं आएंगे, क्यों, वो कमर्शियल है, बेचने के लिए वो बनाते हैं, पर घर में तो प्यार से बना के खिलाते हैं तो उसमें कितना आनंद रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं घर में अपने हाथ से परमात्मा की याद में खाना बना के खाओ और खिलाओ, तो खाने वाले का मन भी शुद्ध होगा, खिलाने वालों को भी आनंद आएगा, दुआएं मिलेंगी। तो शरीर को भी देखना है, 6-7 घंटा आराम देना है, रात को 6 घंटा, और ऐसे नहीं कि सारा दिन भी काम करते रहो, रात को भी चार पांच घंटा आराम करो तो नहीं, शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो आजकल डॉक्टर कहते हैं जो ज्यादा सोते हैं ना उसकी आयु भी कम हो जाती है, 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं उसकी आयु भी कम होती है और 6 घंटे से कम सोते हैं उसकी आयु भी कम होती है, परंतु जो ज्यादा सोते हैं उसकी और भी कम होती है। कम सोने वालों से ज्यादा सोने वालों की आयु कम होती है। और सवेरे सवेरे वातावरण बहुत शुद्ध होता है, साधु संत महात्मा सब उस समय साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। और जो भोगी लोग होते हैं वो सोए होते हैं, इसलिए टेंशन का वातावरण नहीं होता है। इसलिए कहा गया है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, खुशी रहेंगे, धनवान भी बनेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारियां 4 बजे उठकर योग लगाती है। वैसे तो सारा दिन योग कर सकते हैं, परंतु उस समय योग सहज हो जाता है, इसलिए वो समय बहुत अच्छा है योग करने का। तो संजो शरीर की संभाल रखो, आत्मा को भी संभाल। और दूसरा है कि जितना हमारे में प्यार मधुरता और मोड़ने की शक्ति, क्योंकि नारियों में ये तो है ही कि हम अपने आप को मोड़ सकते हैं, क्योंकि बचपन से हमको आदत है माँ बाप जैसे कहे ऐसे करने का, शादी हुई पति जैसे कहते हैं ऐसे करते हैं, हाँ पति मर गया तो लड़का जैसे कहेगा ऐसे करेंगे। परंतु अभी बैलेंस रखना है, अपने आप को मोड़ना भी है। तो अपने आप को जहाँ हम समझते हैं कि हम ठीक है, तो अपनी बातों पर पक्के भी रहना है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, यदि हम अपनी बात को छोड़ देते हैं हर टाइम तो फिर क्या होता है, हमको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए भल सारे परिवार की सेवा करो, परंतु अपनी सेवा भी जरूर करनी है, अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का अब उसका भी ख्याल करना है। जैसे कल भी चक्रधारी बहन ने बताया ना कि उस माता ने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए पति के गुजरने के बाद अफीम की आदत शुरू की कि मैं ज्यादा काम करूं, थकावट ना लगे और ज्यादा कमाई करूं। और जब बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे को तकलीफ हुई, उनकी आदत को लिए पैसा खर्च करने की, तो ऐसे होता है कि कभी कभी हम औरों के सुख के लिए अपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नहीं देखना है, ये नहीं करें कि अपने प्रिंसिपल पर हमें मजबूत रहना है। नहीं तो क्या है कि सब हमको दबाते ही रहेंगे। इसलिए विरोध भी करो परंतु मधुरता से, झगड़ा करके नहीं। घर में झगड़ा ना हो ये ध्यान रखना है, शांति से। देखो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अहिंसा से बिना हथियार स्वातंत्र लिया। तो इसी रीत से हमें भी कोई अशांति नहीं, झगड़ा नहीं फैलाना है घर में, पर जो करना है वो शांति से, युक्ति से, समझा कर करना है, ताकि परिवार में शांति रहे। तो माताओं का फर्ज है कि जैसे समय बदलता जाता है वैसे अपने को भी बदलना है। ऐसे नहीं कि हमारे माँ बाप ऐसे करते आए, हमारे दादी दादा जो करते आए वही करना है, नहीं, जो सच है वो करना है, सत्य को पकड़ रखना है। क्योंकि कई बार ऐसे कहेंगे ना, आपके परिवार वाले भी कहेंगे कि देखो हमारे घर में तो विष्णु को मानते आए हैं या देवी को मानते आए हैं, आप शिव जी को कैसे मानते हो। जब मैं ज्ञान में भी आए तभी भी हमारे पिताजी वैष्णव थे, माँ बाप तो कहे कि भाई तुम देवताओं को छोड़कर सीधा शिव जी के ऊपर कैसे चली जाती है, पहले देवताओं की पूजा करनी चाहिए, गुरुओं को मानना चाहिए, पीछे भगवान। परंतु हमने देखा कि यहाँ जो शिव बाबा से हमें प्राप्ति होती है, जो शिव बाबा के पास से इन हमारी पुरानी बहनों ने पवित्रता की, शांति की, आनंद की शक्ति प्राप्त की है, हमें भी वो करनी है। तो यदि उन्होंने शिव बाबा से प्राप्त की है, क्यों ना मैं भी उनसे करूं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मैंने तो यहाँ आकर देखा है कि सब अच्छा है, मुझे तो कोई यहाँ गलत नहीं लगता है, यदि आपको कुछ गलत लगे तो दिखाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, ठीक है तुमको जो ठीक लगे, क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई 27 साल की थी, डॉक्टर भी बन गई थी, तो इसलिए हमारे पिताजी ने कहा कि अभी तो मुझे चिंता नहीं है, तुम शादी नहीं करो कोई बात नहीं है, तुम कमा कर खा सकती हो, मुझे चिंता नहीं, तुम समझदार हो, तुमको जो चाहिए करो। तो इसी चीज से देखो, जब हम युक्ति से, समझ से अपने लौकिक को समझाते हैं तो नेचुरली है प्रेम से कभी न कभी वो समझ जाएंगे, चाहे बच्चे भी है, जितना मार्ग से वो सुधरेंगे नहीं उतना प्यार से सुधरेंगे। क्या है कि हम लोगों को आदत पड़ी है बच्चों को सुधारने के लिए मारना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, पर गुस्सा करना उससे क्या होता है, बच्चे उस समय तो छोटे हैं ना, तब तक तो शांत हो जाते हैं और जो माँ बाप कहते हैं वैसे करेंगे, और थोड़ा बड़ा होगा तो क्या करेगा, वो बिल्कुल माँ बाप से ऑपोजिट। माँ बाप कहेंगे अब रात है, तो कहेंगे नहीं अभी तो दिन है, अभी हमारे सब मित्र सब डांस करने जाते हैं, हम भी तो जाएंगे। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक माता कहे मैं 4 बजे उठकर योग में आती हूँ और हमारा बच्चा घूम गाव कर डांस करके 4 बजे घर आता है, खास फ्राइडे सैटरडे जब दूसरे दिन छुट्टी है तो बच्चे 4 बजे 5 बजे घर में आएंगे, फिर 12 बजे तक सोएंगे क्योंकि और तो कुछ काम नहीं है। तो जैसे गीता में है ना, योगियों की रात है वो भोगियों का दिन है, भोगियों का दिन है योगियों की रात है। तो योगियों का 10 बजे रात हो जाती है और 4 बजे दिन शुरू होता है, और भोगी है 4 बजे सोएंगे 12-1 बजे उठेंगे। तो इसलिए उनको देखकर हमें अपना जीवन न खराब करना है, न गुस्सा करके अपना पाप करना है, गुस्सा नहीं करना है, प्रेम से समझाना है। तो उसका भी एक मिसाल दूं, मैं लंदन में थी तो एक यूथ वहां स्टडी करने कैरेबियन से आया था, कैरेबियन आइलैंड काफी दूर है अमेरिका में, तो वो वहां स्टडी करने आया था। तो जब कोर्स करने आया तो मैंने उसको पूछा कि तुम भगवान को मानते हो, तो कहता है मैं हिंदू के भगवान को नहीं मानता हूं। क्यों? देखो हिंदू धर्म कैसा है, हमारी माँ है ब्राह्मण को भोजन करने बुलाती थी और जब तक ब्राह्मण खा के नहीं जाता है तब तक बच्चों को भूखे मरना है, ऐसा कैसा धर्म। हिंदू के राम को देखो, हमेशा उसके हाथ में तीर कमान है, सोने के हिरण को मारता है, और क्राइस्ट देखो उसको कितना प्यार है, वो बीमार भेड़ को अपने कंधे पर ले जाता है। तो क्राइस्ट अच्छा या राम? मैंने कहा तुम प्रार्थना करते हो? हाँ। कौन सी छवि रखते हो? कहता है शंकर की। मैंने कहा अभी अभी तुम कहता है मैं हिंदू भगवान को नहीं मानता है और शंकर की छवि रखी है, फोटो रखा है। तो कहता है मैं जब कैरेबियन से लंदन आया मेरी माँ ने ये चित्र दिया था और कहा रोज इसके सामने दिया जलाना, मस्तक नमन करना, मंत्र बोलना, फिर कॉलेज में जाना। तो कैसा माँ ने कहा इसलिए करता हूँ। तो देखो माँ का प्यार था, इस कारण ना मानते हुए भी उसने ये काम किया। तो इसी रीत से जब माँ प्यार देंगी तो बच्चा है माँ की इच्छा अनुसार जरूर करेंगे, परंतु यदि हम माँ बच्चों को प्यार नहीं देते हैं, उनको मार देते हैं, दबाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो जब हम बड़े होते हैं तो कहेंगे चलो हमारी शादी हुई, आप अपना घर संभालो, हम अपना घर संभालेंगे, हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जितना हम देंगे प्यार हमें प्यार मिलेगा, जितना हम रिगार्ड देंगे, बच्चों को भी आजकल रिगार्ड चाहिए, रिगार्ड देंगे रिगार्ड मिलेगा, मान मिलेगा। तो इसलिए जितना हम परमात्मा से लेंगे हम औरों को दे सकेंगे। इसलिए हमने देखा है कि जो जो ईश्वरीय ज्ञान लेकर चलते हैं वो क्या होता है कि कभी कभी पति पत्नी का आपस में भेद तो होता ही है, परंतु हमने तो कई एग्जाम्पल देखे हैं जो पति पत्नी ज्ञान के पहले झगड़ते थे, अभी ज्ञान के बाद झगड़ना कम हो गया। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन भाई थे, उसने ऑस्ट्रेलियन माता के साथ शादी की और माता भी बिजनेस करने वाली थी, वो खादी उद्योग में थी, खादी प्रिंट करके बेचती थी और भाई था डिजाइनर। तो क्या हुआ कि आप जानते हैं इंडियन भाई कम नहीं होते हैं ना, उसका रूप भी अच्छा होता है और ऑस्ट्रेलियन माता भी कम नहीं थी, वो भी कमाने वाली थी, तो वो भी कोई रूप सहन करने वाली नहीं थी। तो दोनों कई बार अलग हुए, माता अलग हो गई, पति अलग हो गया, नेचुरली है बच्चे तो माँ के साथ जाते हैं। फिर जब दोनों ने ज्ञान लिया, ईश्वरी ज्ञान में आ गए, तो दोनों फ्रेंड्स हो गए, भल साथ नहीं रहते थे, परंतु जब उस माता को कैंसर हो गया और बच्चे बच्ची तो बड़े हो गए थे, लड़का लंदन में था, लड़की भी ऑस्ट्रेलिया में अलग रहती थी, तो पति ने साथ में रहकर उनकी सेवा की अंत तक युगल की और युगल ने पति के साथ रहकर शरीर छोड़ा। तो ऐसे लंदन में भी हमने एक दो एग्जाम्पल देखे, अभी अभी दूसरा भी ऑस्ट्रेलिया में एक एग्जाम्पल देखा कि दिल्ली का युगल था और उसको दो लड़कियां थी, तो ऑस्ट्रेलिया में आकर दोनों की बनी नहीं, दोनों अलग हो गए। फिर समझो बहन ने ज्ञान लिया तो उसने फिर क्या किया, पति को भी, क्योंकि पति का बच्चों के साथ तो कनेक्शन होता है तो फोन करता रहता था, तो फोन पर ज्ञान दिया पति को। फिर पति को कहा कि तुम सेंटर पर जाकर कोर्स करो, पति ने कोर्स किया और अभी कोर्स करने के बाद दोनों साथ में रहने लगे। तो क्या होता है कि जब तक एक दो को समझते नहीं और एक दो को समझकर कुछ फ्रीडम नहीं देते हैं तब तक तक झगड़ा होता है, परंतु जब समझ जाते हैं, खुद फायदा उठाते हैं, तो क्या होता है कि जरूर ईश्वरीय ज्ञान को समझकर ईश्वरीय प्रेरणा लेके अपना जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं। और हमारे पास तो ऐसे कितने एग्जाम्पल है जो पति पत्नी पहले थोड़ा थोड़ा आपस में पवित्रता के कारण, ब्रह्मचर्य के कारण थोड़ी खिटपिट हुई, परंतु आखिर पति भी ज्ञान में आ गया या पत्नी भी ज्ञान में आई। क्योंकि बंबई में हमारे पास दो युगल ऐसे थे, एक का पति नहीं आता था, एक की पत्नी नहीं आती थी क्लास में। फिर कुछ साल तो झगड़ा हुआ, अभी उसका पति भी ज्ञान में है, बच्चे भी, लड़की भी सेंटर पर रहती है, और जिसकी पत्नी नहीं आती थी वो झगड़ा करती थी, इतने तक कि आत्मघात करने चली गई। आज वो भी क्लास में आती है। तो क्या है कि जब हम समझकर अपनी रीति से चलते रहते हैं, ईश्वर की मदद लेते हैं, तो मार्ग सहज हो जाता है। शुरू शुरू में कठिनाई आती है, क्योंकि परिवार वाले दूसरी रीति से चलते हैं और हमारा खान पान, रहन सहन, घूमना फिरना सब अलग हो जाता है। तो शुरू शुरू में ये होता है, परंतु जब ज्ञान लेने वाले अपना जीवन सुधारते हैं तो परिवार वाले भी उनका जीवन देखकर, खुशी देखकर खुद भी आ जाते हैं। शुरू शुरू में तो ऑस्ट्रेलिया में कई जवान ज्ञान में आ गए और उनके माँ बाप को आश्चर्य लगता था, इसको गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, ये क्या इसकी ड्राई ड्राई लाइफ है। परंतु जब उन्होंने देखा उसके दूसरे बच्चे ड्रग्स में जाकर एक्सीडेंट करके आते थे और ये बच्चा तो माँ बाप से अभी कनेक्शन रखता है, लेन देन करता है, तो और भी खुश है और उनको कहते हैं जा। एक भाई है, वो थोड़ा समय नहीं आया क्लास में और घर में गुस्सा करने लगा, तो उसका माँ कहता है अभी क्यों सेंटर पर नहीं जाता है, सेंटर पर जाता था तो तुम बहुत शांत था। तो क्या होता है कि जब परिवर्तन देखते हैं तो परिवार वाले खुश होकर और भी छुट्टी दे देते हैं और खुद भी आने लगते हैं। ओम शांति।
शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं।
शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं।
जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा।